पृष्ठ संख्या 106। स्थापित व्यवस्था चल रही है क्योंकि उसे सवर्ण अधिकारियों का वरद हस्त है। उनका सिद्धांत सभी को समान न्याय देना नहीं है, उनका नारा है स्थापित मान्यता के अनुसार न्याय। उन्होंने दलितों की गणना के संबंध में पक्षपात का आरोप लगाते हुए कहा कि इस संबंध में मुसलमान भी हमारा साथ नहीं देते। पंजाब की फ्रेंचाइज कमेटी में केवल एक मुसलमान ने हमारा साथ दिया। बंगाल के हिंदू मुसलमानों ने इस प्रश्न पर मुंह तक नहीं खोला। यह तो मुसलमानों के हित में है कि अछूत एक अलग राजनैतिक समुदाय मान लिए जाएं। दलित सवर्ण के रूप में हिंदू समाज का बंटवारा इनके हित में है, क्योंकि मुसलमान अपनी आबादी के अनुपात से ज्यादा हिस्सा मांग रहे हैं, इसीलिए वे इस प्रश्न पर मौन हो जाते हैं। उन्हें अधिक हिस्सा मिलने से सवर्ण हिंदुओं का हिस्सा इन्हें मिलता रहेगा। यद्यपि इस्लाम जाति वर्ण के ऊपर उठा हुआ है, लेकिन हिंदुस्तानी मुसलमानों में भी जाति वैसे ही घुसी हुई है जैसे हिंदुस्तानी हिंदुओं ने 1935 के अधिनियम में हमारी परिभाषा निश्चित कर दी है। इसीलिए हमें मुसलमानों के मदद की कोई जरूरत नहीं है। 31 मई 1936 को बंबई में महारों ने सम्मेलन करके हिंदू धर्म छोड़ देने का प्रस्ताव किया। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा, इस प्रस्ताव को देश भर के अछूतों का समर्थन प्राप्त है। उन्होंने कहा, धर्म एक निश्चित सामाजिक उद्देश्य से सामाजिक व्यवस्था बनाने में सहायक होता है। अछूतों को सवर्ण हिंदुओं से यह पूछने का अधिकार है कि क्या उनका हिंदुत्व अछूतों को जीव मात्र के रूप में प्रतिष्ठित करने को तैयार है? क्या उनका धर्म इन्हें बराबरी का दर्जा दिलाने को तैयार है? क्या उन्हें स्वतंत्रता का लाभ मिलेगा जिससे भाईचारा कायम हो सके? क्या सवर्ण हिंदू सोचते हैं कि अछूत उनके बच्चे हैं? क्या अछूतों के साथ जानवरों जैसा नहीं मनुष्य जैसा व्यवहार होगा? क्या सवर्णों का धर्म उन्हें कभी सिखलाएगा कि वे अछूतों के साथ न्यायिक मानवीय व्यवहार करें, उनके साथ मित्रवत पेश आवें, उन्हें प्यार करें, आदर करें? हिंदुत्व बिना किसी भेदभाव के जीवन का आधार व्यापक बनाएगा। हिंदुत्व में उच्चता का भाव इसी से जगता है कि उसके नीचे करोड़ों अछूत हैं। कोई अछूत किसी सवर्ण का कष्ट नहीं काट सकता, फिर भी उसे स्कूल में प्रवेश नहीं मिलेगा। हिंदुत्व अछूत के स्वाभिमान के भाव को नकारता है और उन्हें समाज से वंचित करता है। इसीलिए यदि अछूत हिंदुत्व का त्याग करे तो इसमें उनकी क्या गलती है? यद्यपि धर्म त्यागने से अछूतों को कोई धन नहीं मिलेगा, राजनैतिक रूप में भी वे अपने अधिकारों से वंचित हो जाएंगे जो उन्हें अछूत होने के नाते प्राप्त हुआ है। लेकिन अछूतों को सामाजिक बहिष्कार से मुक्ति मिलेगी, हीन भावना से मुक्ति मिलेगी। इसका सामान्य सामाजिक स्तर बढ़ेगा। अछूत तो गंदा नाम है, यह तरक्की से रोकता और अधोमुखी बनाता है। डॉक्टर अंबेडकर चतुर्वर्ण को संकीर्ण सिद्धांत मानते थे। यह समाज का चार हिस्सों में वर्गीकरण करने के अलावा कुछ नहीं है, किंतु ये विकृत रूप में सतहबद्ध गैर बराबरी का रूप धारण कर लिया है। यह कानूनी और दंडात्मक है। उन्होंने सेदिंग जैसे विद्वान की किताब हिंदू ट्राइब्स एंड कास्ट, जिसमें शूद्रों को आर्यों से अलग कहा गया है, का खंडन करते हुए कहा कि इंडो आर्यन समाज में ब्राह्मणों ने दंडात्मक विधान द्वारा कुछ लोगों को शूद्र घोषित कर दिया। समय के थपेड़ों से ब्राह्मणों ने इन्हें अंतिम छोर पर पहुंचा दिया। एक डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर राइटिंग एंड स्पीचेज कॉमा वॉल्यूम 5 कॉमा पृष्ठ संख्या 244। दो वही कॉमा पृष्ठ संख्या 403। पृष्ठ संख्या 107। वे घृणित सामाजिक जीवन जीने के लिए मजबूर कर दिए गए। यह चातुर्वर्ण की अंतिम जाति न रहकर नीच जातियां घोषित हो गईं। पहले तो यह सभ्यता, संस्कृति, इज्जत और प्रतिष्ठा की दृष्टि रखते और इतिहास के इस तत्व को महसूस करते कि मूलतः शूद्र आज की मौजूदा नीच जातियों से भिन्न थे, तो इस तरह का दुखांत क्रूर सामाजिक पतन न होता। आज भी संहिता को क्रूर ढंग से शूद्रों पर लादा जाता है, जैसे प्राचीन काल में लादा जाता था। संस्कृत भाषा के ज्ञान के अभाव में ऐसी बातों को गहराई से जानने का अधिकार नहीं है, ऐसा कुछ पंडित मेरे बारे में कहते हैं। लेकिन सभी ग्रंथों का अंग्रेजी अनुवाद पढ़ने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ। उन्होंने कहा, एक शूद्र भी आर्यों की ही धारा के हैं, खास तौर से सूर्यवंशी खानदान के। दो एक समय था जब आर्यों का समाज केवल तीन वर्ण को स्वीकारता था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। तीन शूद्र कभी अलग वर्ण के नहीं थे, इंडो आर्यन शाखा के क्षत्रिय थे। चार शूद्र राजाओं व ब्राह्मणों के बीच लगातार द्वंद्व था, ब्राह्मण अनादर और उपेक्षा के शिकार थे। पांच शूद्रों के अपमान के शिकार होकर तथा अपने ऊपर होने वाले अन्याय से ऊब कर ब्राह्मणों ने उनका उपनयन संस्कार छोड़ दिया। छह उपनयन न होने से क्षत्रियों की एक शाखा बहुत नीचे हो गई और वैश्य से भी नीचे शूद्र हो गए। उन्होंने हिंदुओं की पांच धाराएं मानी, एक अंधविश्वासी कट्टरपंथी, दूसरे आर्य समाजी जो अंधविश्वासों के खिलाफ तो हैं किंतु वेदों के कट्टर समर्थक हैं, तीसरे वे जो हिंदू धर्म की गलतियों को स्वीकारते हुए भी उसकी निंदा नहीं करते हैं। वे भगवान भरोसे हैं कि अब स्वतः यह गलतियां खत्म हो रही हैं। चौथे वे हैं जो राजनीतिक हैं, इन पचड़ों में पड़ने से परहेज करते हैं और कहते हैं स्वराज्य का काम ही मुख्य काम है। सामाजिक सुधार तो आज़ादी के बाद हो ही जाएगा। पांचवे वे हैं जो सामाजिक सुधार के काम को स्वराज्य से भी महत्वपूर्ण मानते हैं। अंबेडकर के अनुसार वर्णों को धार्मिक मान्यता के ही कारण सामाजिक मान्यता मिली है। किसी राजनैतिक हिंदू को निष्ठापूर्वक छुआछूत के काम को खत्म करने में नहीं लगा सकते। उन्हें तो तात्कालिक लाभ चाहिए। वे दूरगामी परिणामों के पक्षधर नहीं हैं, वे कम से कम प्रतिकार के पक्षधर हैं। वे समझाते हैं कि यदि छुआछूत खत्म करने की बात पर वे जोर देंगे तो उनकी प्रसिद्धि कम हो जाएगी। इसीलिए जहाँ तक संभव हो इस मामले को स्थगित करते रहो। वे आर्य समाज के वेदवाद के सिद्धांत के भी इसीलिए विरोधी थे कि वेदों में कालांतर में ब्राह्मणों ने पुरुष सूक्त को जोड़ दिया। अतः जब तक वेदों को सनातन चिरंतन माना जाता रहेगा तब तक छुआछूत नहीं खत्म होगा। अतः आर्य समाज ही मिट जाएगा, छुआछूत नहीं मिटेगा। चारों वेदों में आर्य केवल ऋग्वेद को मानते हैं, अथर्ववेद को क्यों नहीं वही मान्यता प्रदान करते हैं क्योंकि इसके अनुसार आर्यों की दो धारा हो गई, दोनों अलग-अलग नस्ल के माने गए। उन्होंने वेदों, तैतरीय संहिता, शतपथ ब्राह्मण, महाभारत, रामायण आदि सभी में वर्णित सृष्टि की उत्पत्ति की कहानियों की मिसाल देते हुए कहा कि सभी ग्रंथ सृष्टि रचना की अलग-अलग कथाएं कहते हैं। मेरी समझ में यह सभी ग्रंथ आर्यों की अलग-अलग धाराओं का ही वर्णन करते हैं। आर्यों में शूद्र और दास एक ही थे। ऋग्वेद में दासों की चर्चा है। मुझे लगता है दास ही शूद्र हैं। इस संदर्भ में वे के पी जायसवाल की अनोखी पुस्तक हिंदू पॉलिटी का उल्लेख कर अपनी बात की पुष्टि करते हैं। एक, डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर, राइटिंग एंड स्पीचेज, कॉमा वॉल्यूम 7, कॉमा पृष्ठ संख्या 11। पृष्ठ संख्या 108। नीति भयूखा के लेखक नीलकंठ बाद वाले दिनों में राज्यारोहण की कक्षाओं में कहते हैं कि राज्यारोहण के समय चार मुख्यमंत्री होते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। वे सभी मिलकर राज्यारोहण की प्रक्रिया पूरी करते थे। तब सभी वर्णों के लोग, यहाँ तक कि सबसे नीच वर्ण के लोग भी राजा को नहलाते थे। युधिष्ठिर के राज्याभिषेक के समय शूद्रों को भी बुलाया गया था। महाभारत के सभा पर्व में इस बात का उल्लेख है कि जनपद और कुलों में शूद्र भी सदस्य बनाए जाते थे। युधिष्ठिर को राजनीति का उपदेश देते हुए भीष्म ने शांति पूर्व में कहा है कि आप तीन तरह के मंत्री नियुक्त करें, चार ब्राह्मण जो वेद में पारंगत हों, उन्हें स्नातक परंपरा की प्रतिष्ठा प्राप्त हो तथा शुद्ध आचरण के हों, आठ मंत्री क्षत्रिय कुल के हों जिनमें शारीरिक शक्ति अद्वितीय हो तथा शस्त्र धारण कर सकें, 20 मंत्री वैश्य परंपरा के हों और वे धनवान हों तथा 3 शूद्र हों जो विनयी स्वभाव के हों जिनका आचरण शुद्ध हो, नित्य प्रति कर्तव्यों के पालन में दक्ष हों, पुराणों का ज्ञाता सूत भी एक मंत्री बनाया जाए। शूद्र मंत्री का दर्जा ब्राह्मणों के बराबर था, वह गरीब और नीच नहीं था। अब प्रश्न है कि पश्चिमी देशों के विद्वान इस बात की खोज अभी तक नहीं कर पाए कि हिंदुस्तान में शूद्रों को गुलाम का दर्जा कब और क्यों मिला। शिवाजी ने हिंदू राज्य स्थापित कर वैदिक रीति से राज्याभिषेक की बात कही, लेकिन यह संस्कार ब्राह्मण के अलावा कोई नहीं कर सकता था। किंतु उन्हें बताया गया कि जब तक वे क्षत्रिय नहीं होंगे, तब तक वैदिक रीति से उनका संस्कार नहीं हो सकेगा। यदि वे क्षत्रित्व ग्रहण करते हैं, तो भी उपनयन संस्कार कराना होगा। उसके बिना संस्कार नहीं हो सकता। शिवाजी ने दावा ठोका कि वे क्षत्रिय हैं, किंतु उनके दावों का विरोध हुआ। उनके खुद के ब्राह्मण मंत्री मोरोपंत पिंगले ने उनके दावे का विरोध किया। किंतु वाराणसी से पंडित बुलाया गया और गंगा भट्ट नामक ब्राह्मण ने वाराणसी से जाकर 6 जून 1674 को उनका उपनयन संस्कार कराया। प्राप्त जानकारी के अनुसार इसके एवज में शिवाजी ने गंगा भट्ट को लाखों रुपए की अशर्फी, हाथी, घोड़े, सोने आदि दान में दिए। डॉक्टर वैद्य ने लिखा है कि 1 करोड़ से अधिक का दान इस समारोह में ब्राह्मणों, योगियों और साधुओं को दक्षिणा रूप में दिया गया। फिर भी शिवाजी के मंत्री ही कहते हैं कि वे शूद्र हैं, क्षत्रिय नहीं हैं, इसीलिए राज्यारोहण नहीं हो सकता। किंतु किंतु दक्षिणा पाने के बाद ब्राह्मणों ने उनका संस्कार कर दिया, अर्थात ब्राह्मण तो पैसे से भी खरीदे जा सकते हैं। इसके बावजूद शिवाजी की ही वंशावली के कोल्हापुर के राजे हैं और उनका आज तक ब्राह्मण संस्कार नहीं कराते हैं। शिवाजी की ही वंशावली के साहू जी महाराज के बच्चों का संस्कार ब्राह्मणों ने नहीं कराया। इस तरह उपनयन हो किसका न हो, ब्राह्मणों का यह बताना किसी कानूनी अथवा धार्मिक सिद्धांत पर नहीं है। यदि ब्राह्मण उपनयन कराने से मना करें तो इसकी अपील ब्राह्मण परिषद में ही हो सकती है। इसी अधिकार का प्रयोग कर ब्राह्मणों ने शूद्रों का उपनयन कराने से मना कर दिया और कालांतर में एक बिखरे हुए मानव को शूद्र रूप में गांव के बाहर बसाया जाने लगा। इस इतिहास की विडंबना को ठीक करना ही होगा। एक, डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर राइटिंग एंड स्पीचेज, कॉमा वॉल्यूम 7, कॉमा पृष्ठ संख्या 111, दो वही, कॉमा पृष्ठ संख्या 175।